पृष्ठ संख्या 138, दशम अध्याय, जॉन लॉक का शेष। लॉक के अनुसार द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें मूल गुण रहते हैं। वस्तुतः द्रव्य अज्ञेय या अननोनेबल है, क्योंकि हमारा द्रव्य के साथ कभी साक्षात संबंध स्थापित नहीं होता। हमारा संबंध द्रव्य के गुणों के साथ ही होता है, जो हमारी आत्मा में अपनी प्रतिकृतियां छोड़ जाते हैं। चूंकि गुण केवल शक्ति है और शक्ति के लिए शक्तिमान चाहिए, इसलिए इन गुणों के आधारभूत द्रव्य का अनुमान कर लिया जाता है। पृष्ठ संख्या 139। लॉक बाह्य प्रत्यक्षवादी या प्रेजेंटेशनिस्ट न होकर बाह्य अनुमेयवादी या रिप्रेजेंटेशनिस्ट है। बाह्य पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल अनुमान होता है। प्रत्यक्ष केवल गुणों का होता है, द्रव्य का नहीं। इसी को प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद या विज्ञान प्रतिबिंबवाद भी कहते हैं। लॉक के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष है, अतः द्रव्य का प्रत्यक्ष न होने के कारण उन्होंने द्रव्य को अज्ञेय कहा है। द्रव्य की कल्पना मिश्र विज्ञान है, जो कई सरल विज्ञानों के मिश्रण से बनी है। ये सरल विज्ञान स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः द्रव्य की कल्पना में उसकी स्वतंत्र सत्ता का समावेश है। हमारे लिए द्रव्य गुणों का समुदाय मात्र है, किंतु गुणों के अतिरिक्त उनका आधारभूत द्रव्य होना अवश्य चाहिए। भले ही वह हमारे लिए अज्ञेय हो, द्रव्य सर्वत्र एक सा या द सेम एवरीवेयर और मैं नहीं जानता क्या या आई नो नॉट व्हाट है। फिर भी लॉक तीन प्रकार के द्रव्यों को मानते हैं, ईश्वर, आत्मा और जड़ तत्व। आत्मा चेतन तत्व है, जिसकी हमें साक्षात अनुभूति होती है। जड़ तत्व की हमें उसके गुणों द्वारा प्रतीति होती है। ईश्वर का हमें केवल परोक्ष ज्ञान होता है। ईश्वर अनादि, अनंत, नित्य, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है और इस जगत के सृष्टा हैं। अब ज्ञान के स्वरूप और उसकी सीमा का विचार करना चाहिए। हमारे ज्ञान के विषय केवल हमारे विज्ञान हैं। ज्ञान हमारे विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का, उनकी संगत या असंगत का दर्शन मात्र है। विज्ञानों की असंगत या अविंशवाद मिथ्या ज्ञान का कोरी कल्पना या विश्वास का क्षेत्र है, सत्य ज्ञान का नहीं। हमारे विज्ञानों के कुछ आदि रूप या आर्च टाइप्स हैं। यदि विज्ञानों की संगत उनके आदि रूपों के साथ हो, उन गुणों के साथ हो जिनके कारण विज्ञान उत्पन्न होते हैं, तो हमारा ज्ञान सत्य है। यदि संगति न हो तो ज्ञान असत्य है। जितनी अधिक संगति होगी, ज्ञान की सत्यता भी उतनी ही अधिक होगी। वस्तुतः ज्ञान के साक्षात विषय तो विज्ञान ही है, किंतु ज्ञान विषय बनाना चाहता है, वस्तुओं को। ऐसा वह विज्ञानों के माध्यम से ही कर सकता है, साक्षात नहीं। विचार वस्तुओं के स्वरूप धर्मों के प्रतिबिंब हैं और आत्मा के पास यह साधन अवश्य है जिससे वह यह ज्ञान लेती है कि अमुक प्रतिबिंब सत्य है या मिथ्या। यदि प्रतिबिंबों की उनके बिंबों से अर्थात वस्तुओं के गुणों से संगति है तो वे सत्य हैं, और यदि असंगति है तो मिथ्या है। पृष्ठ संख्या 140। लॉक ने हमारे ज्ञान के तीन प्रकार बताए हैं, बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान या सेंसिटिव नॉलेज, आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान इंट्यूटिव नॉलेज और परोक्ष ज्ञान या डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज। बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के संवेदनों से प्राप्त होता है। मिश्र विज्ञानों में द्रव्य विज्ञानों को छोड़कर जितने भी विज्ञान हैं अर्थात पर्याय विज्ञान और संबंध विज्ञान, वे पदार्थों को प्रतिबिंबित करने का दावा नहीं करते और इसीलिए उनके ज्ञान के मिथ्या होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। किंतु सरल विज्ञानों और द्रव्य विज्ञानों के बिंबों का अस्तित्व आत्मा के बाहर है और उनका ज्ञान या तो पदार्थों के मूल गुणों के प्रतिबिंबों का ज्ञान है या उपगुणों का ज्ञान। जो प्रतिबिंब या उपगुण मूल गुणों द्वारा आत्मा में उत्पन्न किए जाते हैं, अतः इनके विषय में मिथ्या या सत्य होने का प्रश्न उठता है। यदि प्रतिबिंब अपने बिंबों के समान है तो ज्ञान सत्य है, अन्यथा मिथ्या। सरल विज्ञानों के प्रतिबिंब मूल गुणों द्वारा उत्थापित होने के कारण सदा सत्य ही होते हैं, क्योंकि मूल गुण वस्तुओं के वास्तविक धर्म होने के कारण अपना यथार्थ प्रतिबिंब ही आत्मा पर अंकित करते हैं। उपगुणों की सृष्टि भी आत्मा के संवेदनों के रूप में ये मूल गुण ही करते हैं, अतः उपगुण भी यथार्थ ही होते हैं। अतः इंद्रिय संवेदन जन्य बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान का यथार्थ होना असंदिग्ध है, क्योंकि संवेदन वस्तुओं के वास्तविक गुणों द्वारा उत्थापित किए जाते हैं। द्रव्य विज्ञानों के विषय में जो मिश्र विज्ञान है, संदेह अवश्य हो सकता है, क्योंकि हमें द्रव्यों का साक्षात ज्ञान नहीं होता। किंतु फिर भी बाह्य पदार्थों के अस्तित्व में लाख का अखंड विश्वास है। इसके लिए वे निम्नलिखित प्रमाण देते हैं। पहला, हमारे संवेदनों का कारण बाह्य पदार्थ है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य किसी इंद्रिय से वंचित हो तो वह तत्संबंधी संवेदनों का ज्ञान नहीं कर सकता। चक्षु विहीन को रूप नहीं दिखाई देता और बहरा शब्द नहीं सुन सकता। दूसरा, संवेदन और स्मरण में अंतर है। संवेदन अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं, स्मरण धुंधले और मंद। अतः संवेदन को बाह्य पदार्थ जनित ही मानना पड़ता है। हमारी विभिन्न इंद्रियां बाह्य वस्तुओं की सत्ता अपने अपने संवेदनों से पुष्ट करती हैं। जिस अग्नि को मैं देखता हूँ उसे छूकर भी जान सकता हूँ। अतः बाह्य वस्तुओं की सत्ता सिद्ध है, इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ होता है। द्वितीय प्रकार का ज्ञान है आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान। यह ज्ञान सबसे अधिक प्रामाणिक और निश्चयात्मक होता है। पृष्ठ संख्या 141। यह स्वसंवेदनों से होता है। इसमें संवेदनों द्वारा उत्पन्न दो विज्ञानों की परस्पर संगति बिना किसी तृतीय विज्ञान की सहायता के स्वतः जानी जाती है। यह ज्ञान स्वतः सिद्ध, निश्चयात्मक और असंदिग्ध है। स्वतः सिद्ध इस अर्थ में नहीं है कि यह आत्मा का सहज विज्ञान है, क्योंकि कोई विज्ञान सहज नहीं हो सकता। स्वतः सिद्ध इस अर्थ में है कि उत्पन्न होते ही यह असंदिग्ध रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात आत्मा का और उसकी अवस्थाओं का ज्ञान तथा कुछ बौद्धिक मौलिक नियमों का ज्ञान, जिनका बाह्य वस्तुओं से कोई साक्षात संबंध नहीं, स्वतः सिद्ध और असंदिग्ध है। उदाहरणार्थ हमारे अपने अस्तित्व का ज्ञान, हमारी मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान, और यह ज्ञान की सफेद काला नहीं होता और दो दो मिलकर चार होते हैं। तृतीय प्रकार का ज्ञान है परोक्ष ज्ञान। इसमें दो विज्ञानों की परस्पर संगति अन्य विज्ञानों के माध्यम से जानी जाती है। यह निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग की प्रणाली है। ईश्वर का अस्तित्व इसी अनुमान प्रमाण के आधार पर सिद्ध होता है। इस विराट विश्व के सृष्टा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। गणित शास्त्र इस प्रकार के परोक्ष ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है आंतर प्रत्यक्ष द्वारा। जड़ जगत के अस्तित्व का ज्ञान होता है बाह्य प्रत्यक्ष द्वारा, और ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान द्वारा। यही मानव ज्ञान की सीमा है। यह लॉक के दर्शन का संक्षिप्त परिचय है। लॉक ने दर्शन में ज्ञान मीमांसा का महत्व बताकर एक नई परंपरा को जन्म दिया। उन्होंने इंद्रिय अनुभववाद या इम्प्रिसिज्म, संवेदनवाद सेंसेशनिज्म और विज्ञान प्रतिबिंबवाद रिप्रेजेंटेशनिज्म की प्रतिष्ठा की। लॉक की इस परंपरा को आगे के दार्शनिकों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा, किंतु लॉक की ज्ञान मीमांसा अनेक दोषों से परिपूर्ण है। वस्तुतः इंद्रिय अनुभववाद की सच्ची प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। इंद्रियों द्वारा केवल विशेष संवेदनों की पृथक पृथक प्रतीति होती है। जब तक ये बिखरे हुए संवेदन बुद्धि की मौलिक धारणाओं और नियमों द्वारा व्यवस्थित न किए जाएं, तब तक ये संवेदन मात्र रहेंगे, ज्ञान नहीं बन सकते। ज्ञान का उद्गम इंद्रियानुभव में कदापि नहीं हो सकता। ज्ञान हमारी आत्मा का सहज और स्वरूप धर्म है। पृष्ठ संख्या 142। इस सहज निर्विकल्प अनुभूति और उसके स्वतः सिद्ध मौलिक नियमों को माने बिना ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। हाँ, पशुओं के समान हमें भी इंद्रिय संवेदनों का पृथक पृथक अनुभव तो होगा, किंतु इस अनुभव को ज्ञान नहीं कहा जा सकेगा जब तक बुद्धि के विकल्प इन निरीह और विकल्पहीन संवेदनों को जो पृथक पृथक प्रतीत होते हैं अपने सहज नियमों द्वारा एक सूत्र में बांधकर ज्ञान का रूप न दे दे, तब तक हमें केवल पार्श्विक संवेदन के स्तर पर ही रहना होगा। बुद्ध विकल्पों के अभाव में दो संवेदनों में परस्पर कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता। बुद्ध विकल्पों के बिना तो हम संवेदन को संवेदन के रूप में भी नहीं जान सकते। हमें संवेदन की वेदना मात्र होगी, उसका ज्ञान नहीं होगा। अतः ज्ञान को इंद्रिय संवेदनों से बांध देने पर वह ज्ञान ही नहीं रहता। इंद्रिय अनुभव के आधार पर कोई दर्शन स्थापित नहीं हो सकता, स्वयं इंद्रिय अनुभववाद भी नहीं। पुनश्च यदि थोड़ी देर के लिए इंद्रिय अनुभव को सविकल्प बुद्धि से अनुप्राणित और व्यवस्थित प्रत्यक्ष ज्ञान भी मान लें तो भी परिणाम घोर असंतोषजनक होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर चाहे वह प्रत्यक्ष बाह्य हो चाहे आंतर चाहे दोनों, कोई दर्शन खड़ा नहीं हो सकता। इस अनुभववाद के अनुसार हमें केवल अपने विज्ञानों का ही साक्षात ज्ञान होगा। जो विज्ञान संवेदन या स्वसंवेदन के द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे, अतः संवेदन स्वसंवेदन और विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, न आत्मा की, न जड़ जगत की और न ईश्वर की। यह संवेदनवाद संदेहवाद और अज्ञेयवाद का जनक है। इसके अनुसार किसी वाद की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, स्वयं इसकी भी नहीं। और इस प्रकार का यह आत्मघात करके समाप्त हो जाता है। हाँ, इंद्रिय संवेदनों का बड़ा भारी महत्व है। वे हमारे ज्ञान को जगाते हैं, उसे विकसित करते हैं, किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। ज्ञान के बीज आत्मा के सहज स्वरूप में विद्यमान हैं, वे बाहर से नहीं आते। इंद्रिय अनुभव उन बीजों को पल्लवित पुष्पित और फलित करता है। वस्तु स्थिति यह है, लॉक ने इसे नहीं समझा और फिर अनुभववाद की आत्मघाती प्रवृत्ति से घबराकर तर्क को ताक में रख दिया तथा ईश्वर जीव और जगत तीनों द्रव्यों की सत्ता स्वीकार कर ली। यदि द्रव्य अज्ञेय है तो हम ईश्वर जड़ और चेतन द्रव्यों की सत्ता कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जब द्रव्य से हमारा साक्षात संबंध ही नहीं, जब हमारे ज्ञान के विषय केवल हमारे विज्ञान हैं, तो हम अपने विज्ञानों की दुनिया में ही मस्त रह लें। हमें जड़ जगत, आत्मा और ईश्वर से क्या प्रयोजन? हमारा सारा संसार हमारे मन की ही कल्पना बन जाता है। पृष्ठ संख्या 143। लाख का यह कथन कि आत्मा कोरे कागज या अंधेरे कमरे के समान है और निष्क्रिय होकर इंद्रिय संवेदनों को ग्रहण करता है, हास्यास्पद है। आत्मा सक्रिय संग्रह करने वाला है, निष्क्रिय नहीं। यदि मैं किसी इंद्रिय का द्वार ही बंद कर दूं, जैसे आंखें मूंद लूं, तो संवेदन की सामर्थ्य नहीं कि मेरी आत्मा में घुस सके। और यदि आंख खोलकर भी मैं सक्रिय रूप से संवेदनों को ग्रहण न करूं, तो वे संवेदन ज्ञात ही नहीं होंगे। यदि मेरा ध्यान किसी विचार में रम रहा है, तो बाहर कितना ही शोर हो, मैं उसे नहीं जानता। शोर हो रहा है और मेरी श्रोत इंद्रियों का उससे संपर्क भी हो रहा है, किंतु मैं उसे नहीं सुनता। संवेदन है किंतु उनका ज्ञान नहीं है, अर्थात वे या बुद्ध विकल्प के अभाव में ज्ञान के रूप में परिणत नहीं हो रहे हैं। मैं अपने विचारों में खोया सड़क पर चला जा रहा हूँ। सामने से मेरे मित्र आ रहे हैं, मेरी चक्षु इंद्रियों का उनसे सन्निकर्ष हो रहा है, किंतु मैं उन्हें नहीं देखता, देखकर भी नहीं देख पाता। यदि आत्मा निष्क्रिय है, तो यह संभव नहीं हो सकता। पुनश्च हमारे ज्ञान में जो निश्चयात्मक प्रामाणिकता और सार्वभौमता है, वह इंद्रिय अनुभव से नहीं आ सकती, क्योंकि इंद्रिय अनुभव विशेषों का होता है, सामान्यों का नहीं। लाक के अनुसार सामान्य कल्पना मात्र है। यदि ऐसा है, तो हमारे ज्ञान में कभी निश्चयात्मकता नहीं आ सकती। सारा ज्ञान संदिग्ध रहेगा, स्वयं इंद्रिय अनुभववाद भी संदिग्ध होगा, और इस प्रकार अबाधित संदेहवाद को जन्म देकर इंद्रिय अनुभववाद आत्महत्या कर लेगा। लाक के अनुसार वस्तुतः जड़ द्रव्य और गुण का भेद नहीं हो सकता, और न मूल गुण और उपगुण का भेद हो सकता है। इसको बर्कले ने स्पष्ट किया है, अतः इसका विवेचन आगे करेंगे। 10th अध्याय समाप्त।